नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण में एक नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में बाबा साहेब समरसता स्थल और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में समाज सुधारकों के नाम पर बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण की घोषणा की। प्रदेश में आज बैसाखी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया और द्वितीय केदार मद महेश्वर के कपाट 21 मई तथा तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण में एक नए युग की शुरुआत हुई है। महिला सशक्तिकरण पर श्री धामी ने कहा कि यूसीसी के माध्यम से राज्य की मुस्लिम बहन बेटियों को हलाला, इद्दत, तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का काम किया जा रहा है।
जो बाबा साहब की सोच में थे, जो उन्होंने भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो साकार हो रहे हैं। जिन गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की सोच बाबा साहब को आगे बढ़ाने की थी, उन सभी पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज समानता का अधिकार मिल रहा है उत्तराखंड राज्य में। बाबा साहब ने जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया था, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है और ये बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि।
कार्यक्रम में उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि हरिद्वार में बाबा साहेब समरसता स्थल का निर्माण और अनुसूचित समाज के बाहुल्य इलाकों में समाज सुधारकों के नाम पर बहुउद्देशीय भवन बनाए जाएंगे। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हो रही हिंसा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन कब्जा करने वाले माफिया सक्रिय हो गए हैं, इसलिए हिंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
वक्फ के नाम पर जो जमीनें लूटी थी, जिन पर भू माफियाओं ने कब्जा किया था, गुंडे बदमाशों ने कब्जा किया था, उनको छूटने की बारी आ गई है, इसलिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पर देश के लोग इसको सहन नहीं करेंगे और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि चूंकि वक्फ बिल देश के हित में लाया गया है, वो जमीनें जो आज बिना किसी कानून के आज कहीं ना कहीं कब्जाई गई थी, उनको छूटना है और वो छूटेंगी।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में बिना पंजीकरण के अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। जिले के अपर जिलाधिकारी विवेक कुमार राय ने बताया कि प्रशासन की टीम अवैध रूप से चल रहे मदरसों को सील कर रही है।
कल की जो कार्रवाई थी 9 बजे से फिर जो है शुरू हो गई है। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारी टीम सक्रिय है, हर ऐसे स्थान पे जो हमारे चिन्हीकरण में अवैध अपंजीकृत मदरसे निकल के आए हैं वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। 2 जगह पे सीलिंग हो चुकी है, 3री जगह पर हम पहुँच चुके हैं। कुल कल जो है 14 स्थानों पर कार्रवाई हुई थी, आज 2 और जुड़ गए, उसमें 16 हो गए।
इससे पहले कल भी हल्द्वानी में 14 अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी। प्रदेश के सभी 13 जिलों में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 630 रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल 617 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने आज यह जानकारी दी। श्री सिमल्टी ने बताया कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन 9 मार्च को राज्य के सभी 13 जिलों में बनाए गए 107 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इस परीक्षा में कुल 13,403 अभ्यर्थी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि चयन सूची सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
आज प्रदेश में खासकर पर्वतीय अंचल में बैसाखी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने घरों में पूड़ी पकौड़ी समेत विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। बागेश्वर जिले के बाबा बागनाथ धाम में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाबा बागनाथ को समर्पित यह धाम कुमाऊं क्षेत्र की आस्था का केंद्र माना जाता है। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंची श्रद्धालु लक्ष्मी डोला का कहना है कि वे हर साल बाबा से सुख शांति की प्रार्थना करने आते हैं। उनका मानना है कि बाबा बागनाथ के दर्शन से न सिर्फ उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में शांति और संतुलन भी आता है।
तो बैसाखी का पर्व है वो नई फसल के कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उत्तराखंड पंजाब आदि में नए फसल के उसमें मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर नए जो समस्या लगता है उसमें जो भी दोष होते हैं किसी भी राशि का या किसी भी तरह के, जैसे किसी को बाया पैर जाता है, जैसे इस बार वृश्चिक राशि का मेरी बिटिया का है, तो हम उसी के लिए यहाँ पर आए हैं उसके निवारण। तो पंडित जी जो है यहाँ पर पूजा करते हैं और आज बैसाख महीने का पहला सोमवार भी है, तो माना जाता है कि बैसाख महीने में महादेव की जो पूजा है वो काफी फलीभूत होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं।
बागेश्वर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि बैसाखी का पर्व जहां खेती किसानी के नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है, वहीं यह पर्व सामाजिक और धार्मिक एकता का संदेश भी देता है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट 21 मई और तुंगनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर उत्तराखंड के प्रमुख 5 केदार हैं। तुंगनाथ उखीमठ में स्थित पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में आज पंचांग गणना के बाद मंदिर के तीर्थ पुरोहितों और समिति ने मद महेश्वर मंदिर के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की। उत्तरकाशी जिले में स्थित माँ यमुना के मायके में स्थित शनिदेव महाराज सोमेश्वर महाराज मंदिर के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह 7:30 पर विशेष पूजा अर्चना विधि विधान के साथ मंदिर के द्वार खोले गए। देहरादून के रायपुर ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन की अभिनव पहल शुरू की है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर से सूखा कूड़ा एकत्र करने के साथ ही अपनी आजीविका को भी संरक्षित कर रही हैं। इस कार्य में वेस्ट वॉरियर्स एनजीओ द्वारा आवश्यक आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे महिलाएं प्रतिमाह 6,000 तक आय सृजित करने लगी हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि वेस्ट वॉरियर्स एनजीओ की मदद से इस मॉडल का विस्तार किया जाएगा और अन्य ग्राम पंचायतों में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन की दिशा में कार्य किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश और ओम पर्वत पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों को 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए। श्री टम्टा ने बताया कि एसएसबी को 10, आईटीबीपी को 10, कुमाऊं स्कॉट को 10, केएमवीएन को 6 और स्वास्थ्य विभाग को 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधा मिलने से तीर्थयात्री यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने पर इसका लाभ उठा सकेंगे।
जो भी हमारे तीर्थयात्री आते हैं, जो कि हाई अल्टीट्यूड में जाने के कारण से ऑक्सीजन का कम मात्रा रहती है, उनके कोई ऐसी दिक्कत ना आए तो उन्होंने 40 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के दिए हैं, जिनके माध्यम से कभी कोई ऐसा खतरे की घंटी बजे तो उनका जीवन बचाया जा सके। हमारे आर्मी मेडिकल कोर को, हमारे आईटीबीपी को, हमारे एसएसबी को, हमारे केएमवीएन जो कि यात्रा चलाता है खादी कैलाश की, उनको और हमारे हॉस्पिटल को, सभी को 40 कंसंट्रेटर उपलब्ध हुए।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण में एक नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में बाबा साहिब समरसता स्थल और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में समाज सुधारकों के नाम पर बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण की घोषणा की। प्रदेश में आज बैसाखी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया और द्वितीय केदार मद महेश्वर के कपाट 21 मई तथा तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 6:50 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।